सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर अज्ञानी भी जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। संगम युग की घड़ियां जो सारे कल्प में एक बार ही आती है और वो जो सौभाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं उनको ही ये सुअवसर मिलता है जो कोटों में कोई और कोई में कोई होते हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा विचित्र है, बाबा के बच्चों का पार्ट विचित्र है। हर एक का अनुभव भी अपना एक अनोखा अनुभव है। और इस संगम युग में सबसे बड़ी पूंजी अनुभव की होती है, क्योंकि उस अनुभव से ना तो कोई हिला सकता है ना कोई विचलित कर सकता है। कर सकता है कोई भी अंदर की ताकत बाहर की ताकत उसको हिला नहीं सकती, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसी तरह से आज मुझे भी ये कहा गया कि कुछ बाबा के समय की यादें अनुभव सुनाएं। अनुभव तो थोड़े में भी सुना सकते हैं, लंबा भी बहुत है, पर सार में सुनाते हैं कि बाबा के बने कैसे। तो बाबा अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं। बच्चों ने भले 63 जन भक्ति किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कंदराओं में जंगलों में ढूंढते रहे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता हमने भगवान को ढूंढा। क्यों नहीं ढूंढ पाए? वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बच्चे बाप को नहीं ढूंढ सकते, बाप अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ लेते हैं। उसके कई तरीके हैं। तो हर एक के मिलने का बाप के पास तरीका अलग अलग है। तो आज से 50 साल पहले हम सभी जैसे आप लोग भी अपने परिवारों में खाते खेलते घूमते एक साधारण जिंदगी बिताते हुए सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम हुई, खाते पीते दिन रात पूरे हो गए, सो के या दिन खा के। लेकिन इस ड्रामा में वो शुभ घड़ी आई जबकि आप कहेंगे आपको कहां से ज्ञान मिला। तो हम लोग यूपी के रहने वाले और आप सभी जानते हैं, नाम तो सुन ही रखा होगा, जब ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा हुआ उससे तो वो शहर प्रसिद्ध हो गया। अयोध्या का नाम सबने सुन लिया होगा मंदिर मस्जिद के झगड़ों से। उसी के नजदीक में डिस्ट्रिक्ट वही है, गांव है। तो हमारे लौकिक पिताजी रिटायर होने के बाद अपने पैतृक स्थान पे चले गए थे, जहां अपनी खेतीबाड़ी, अपना गांव, गांव का मकान, बाग बगीचे। लेकिन और जैसे हमारे चाचा लोग हैं, बड़े भाई हैं, वो सब लखनऊ में सर्विस करते थे। तो किसी के कारण लखनऊ आना हुआ तो हमारे यहाँ भक्ति पूजा नहीं होती थी। कोई तीज त्योहार आया उसके दिन तो पूजा होती, पर नियम से कोई मूर्ति रख करके विशेष पूजा वो नियमित नहीं होती थी। त्योहारों पे होती थी, आज दिवाली है, आज होली है, आज गणेश पूजा है, आज फलानी पूजा, मना ऐसे नव दुर्गा है, नियमित नहीं होती थी। और उसका कारण था कि हमारे लौकिक पिताजी पक्के आर्य समाजी थे, तो वो मूर्ति पूजन को तो मानते ही नहीं आर्य समाजी। तो एक दिन जब लखनऊ आना हुआ तो हमारे छोटे जो चाचा जी तीसरे नंबर के, हमारे पिताजी तीन भाई, सबसे बड़े बीच के और छोटे वाले लखनऊ, तो उन्होंने ही बताया कि आप इतना शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे घर में एक रूम शास्त्रों की लाइब्रेरी थी, चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, जैसे एडवोकेट के नहीं ला की किताबें रखी होती है, वो नियमित पढ़ते थे, प्राणायाम करते थे। आप इतने शास्त्र पढ़ लिए, गीता, भागवत, रामायण, सब सारे वेद शास्त्र, तो यहाँ पे कुछ देवियां आई हैं, वो सीधे भगवान से मिलाती हैं, तो भगवान से मिलाती हैं, ये सुन के आकर्षण हुआ, कहा चलो हम भी चलेंगे। तो उन दिनों में दादी शांतामणि लखनऊ की टीचर थी, तो शांतामणि दादी ने 7 दिन का कोर्स कराया, लेकिन 7 दिन के अंदर ये पक्का निश्चय कर लिया, जो भी अपना विषय है कि परमात्मा आया है, नई दुनिया बना रहा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये संगम युग है, जो जो निश्चय करने की बातें होती हैं, ये ड्रामा हूबहू चल रहा है, सब पॉइंट 7 दिन में निश्चय हो गई। एक शास्त्रवादी 7 दिन में कन्विंस हो जाए तो पार्ट खुलने वाला था। उसके बाद 7 दिन के बाद वापस फिर गांव चले गए, तो सुनाते रहते थे कि ऐसे ऐसे भगवान आया है और हम सुनी आए, लेकिन धारणा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, लाल मिर्च भी नहीं खाए जाते थे, बना के एक बहुत सात्विक भोजन बनता था। उसका रीजन था, उस जमाने में डॉक्टर तो नहीं, वैद्य हुआ करते थे, तो जब कोई बीमारी होती थी तो वो वैद्य लोग 3 परहेज बताते थे, तेल, मिर्च और खटाई, बस यही नहीं खाना है। तो हमारे लौकिक पिताजी का कहना होता था कि जब बीमारी आती है तो तेल, मिर्च, खटाई की परहेज बताई जाती थी, इसको पहले ही छोड़ दो, तो वैद्य छोड़ने के लिए कहेगा ही नहीं, बीमारी आएगी नहीं। इसलिए हमारे घर में भोजन का कोई ज्यादा ये नहीं लगा कि हमें नियम धारण करना है, लहसुन प्याज का सवाल ही नहीं। पिताजी अकेले योग लगाते रहे। थोड़े दिन के बाद मेरे लौकिक चाचा ने खबर किया कि मातेश्वरी, तब हम केवल मम्मा नहीं कहते थे, पूरा सेंटेंस मातेश्वरी सरस्वती जगत अम्बा माँ, वो आ रही हैं कानपुर। तो लौकिक पिताजी सरस्वती माँ से मिलने आ गए, क्लासेस किया, मिले, तो एक दिन मम्मा ने कहा क्लास में, ऐसा कौन है जो ये बाप का संदेश जन जन तक पहुंचाएगा? तो लौकिक पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया। मम्मा ने कहा बाद में मिलना, क्लास के बाद मिले तो मम्मा तो सारा हिसाब लेगी ना, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, कितनी जिम्मेदारी है। तो जब पूछ लेने के बाद कहा कि देखो ऐसा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर वालों की सेवा करो, आपके बच्चे सेवा पर निकलेंगे, आपको घर की सेवा करनी है, आपको बाहर नहीं निकलना है, जो आज्ञा। अब घर की सेवा कैसे करें, परिवार की कैसे करें? तो मम्मा ने फिर शांतामणि दादी को बुलाया, कहा इनको चित्र दे दो और मुरलियां दे दो, बस इसी से सेवा करना। तो उस समय सिर्फ अपने पास 2 चित्र थे, ये सामने लगे ना, झाड़ का चित्र और त्रिमूर्ति का, तीसरा कोई भी चित्र नहीं था। तो इन्हीं 2 चित्रों को दिया जो शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए थे, और जा करके जब हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ आते थे ना, तो मिठाइयां और फल लेके वापस घर जाते थे, तो हम सब तैयार बैठे थे कि अभी फल मिलेगा और मिठाई मिलेगी, वो कुछ भी नहीं लेके गए। कहा बैठो अभी देते हैं क्या क्या लाए हैं, तो दो चित्र सामने रख दिया, मुरली रख दी, यही मिठाई है यही फल है। अब ये फल जिसको लेना है सुबह शाम मेरे साथ बैठेगा योग में और ये क्लास करेगा। तो एक स्वर में सबने कह दिया हम सब बैठेंगे, हमारे दो भाई, मैं, मेरी बहन, मम्मी, माना जो भी थे और आसपास पड़ोस के भी सब आ गए कि कोई एक नई चीज लाए हैं। सुन के बात फैल जाती ना गांव में, बिना मीडिया के मीडिया होता है। ये दो चित्र कोई नई चीज लाए हैं पूजा के लिए, तो ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं कि ऐसे चित्र हों और पूजा किए जाएं। तो इसी तरह से फिर शुरू हो गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरी जो लौकिक छोटी बहन थी वो ट्रांस में जाने लगी, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की, तो वो ट्रांस में जाने लगी। पर वो जो ऐसे सीन बताती थी तो वो लगता था कि नहीं, ये इसके मन की बनाई हुई बात नहीं है। तो सारा आप समझ लो कोई न कोई ट्रांस में जो वतन में देखती थी वो मैसेज भी लाती थी। थोड़े दिन में हमारी वो मुरलियां पढ़ पढ़ के पूरी हो गई। अब क्या करना है, तो आप इसमें देखेंगे ना कोने में पांडव भवन का पता लिखा हुआ है, इसी पते पे बाबा को पत्र लिखा गया कि ऐसे ऐसे हम सब लोग लाए और मुरली तो हमारी खत्म हो गई, अब कितनी बार उसको पढ़ेंगे, क्या पढ़े। उसी पत्र के आधार पे 4 दिन के बाद एक मुरली का पैकेट मिलता है, बस खुशी का पारा चढ़ गया, डायरेक्ट मुरली जाने लग गई। ये भी बाबा ने भी नहीं पूछा कि तुम लोग हो कौन, आजकल तो ऐसे किसको मुरली मिलती ही नहीं है। बस जो फिर बाबा ने पत्र भी लिखा, बाबा के पत्र कभी जीवन इस तरह के कोई महावाक्य सुने ही नहीं थे, तो उसी लगन में उसी खुशी में हम लोग भी पत्र लिखे कि बाबा पत्र का जवाब देंगे। तो जैसे जैसे बाबा जवाब दे वैसे वैसे हम लोग पत्र लिखे, और सबका जवाब बाबा देते थे। तो बड़े मस्त हो गए, दुनिया से निराले हो गए। फिर धीरे धीरे आसपास पड़ोस के लोग भी आने लगे, संख्या बढ़ गई, 10-15 हो गई क्लास की। लेकिन जो भी आए शुरू से नियम पालन कर लिया। अब विद्रोह शुरू हो गया, ये कौन सा ज्ञान लाके फैलाया है, सबसे पहले तो खान पान और ब्रह्मचर्य। तो बहुत मतलब एंटी शुरू हो गए कि ये ईसाई मत फैला रहे। और ये जो झाड़ में वैजयंती माला का फोटो है ना जिसमें दादियां कलश है, यही देख करके हम लोगों ने सफेद कपड़े बनवा लिए क्योंकि और तो किसी को देखा ही नहीं है। पर ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां होती है, ब्रह्मा कुमारियां नहीं कहते थे, शिव शक्तियां। और बाबा ने इनको कलश दिया, यही शिव शक्तियां हैं, यही मना सब कुछ दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। तो वो कपड़े, अब जब कपड़े बना लिए तो सब तो यही कहे ये लोग ईसाई धर्म फैला रहे हैं गांव में, ईसाई मत वाले हैं, और तो उनको कोई ज्ञान है नहीं गांव वालों को। धीरे धीरे विरोधी हो गए। फिर थोड़े दिन और बीत गए, 8 महीना 9 महीना, तो जो आते थे उनके घर वाले उनके ऊपर टार्चर करना भी शुरू कर दिया। उनकी युगलें जो है ना उनके ऊपर सर्दी के दिन में सोए हों तो घड़े का पानी लाके बिस्तर में डाल दे रजाई के ऊपर, और तो कुछ बस चलता नहीं था। योग में बैठे हों तो ईंटा पत्थर मार के उन्हों को चले जाए कि यहां से भागो तुम, ये कौन सा नियम अपनाया है। पर इतने निश्चय बुद्धि की चाहे कुछ भी करो वो हिलने वाले नहीं, ईंटा पत्थर भी खाने वाले और गीले बिस्तर कर दो तो ऐसे रात काटने वाले बैठ के। फिर ऊपर से छोटी जो बहन थी वो एक दिन ट्रांस में बोला कि जो बाबा इसमें हैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, यही बाबा वहां वतन में मिले और उन्होंने कहा कि मैं कानपुर आ रहा हूं और फलाने दिन आ रहा हूं, इतना दिन रहूंगा और कहां ठहरना, पूरी एड्रेस बाबा ने नोट करा दी उसको, तुम लोग वहां चले आओ अगर मुझसे मिलना है तो, क्योंकि किसी से तो कनेक्शन नहीं, पता ही नहीं। अब ये बात सच है, जाएं हम लोग कानपुर इस पते पर, मिलेंगे नहीं मिलेंगे सब पता नोट हो गया। ये पता भी सही मेमोरी में लेके आई है कि नहीं लाई है। तो फिर लौकिक चाचा को पत्र लिखा हमारे मतलब भाई पिताजी ने भाई को अपने कि जरा लखनऊ से पता करो। तो शांतामणि दादी ने कहा नहीं ये पता भी ठीक है और बाबा यहाँ आ रहे हैं साकार पिताश्री पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं। फिर तो पक्का हो गया। लेकिन इतने जो हमारे विरोधी हैं तो हम लोग निकलेंगे कैसे? हमारे परिवार को तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी जो और हैं उनको तो जाने नहीं देंगे। और वो कहे हमको ले जरूर चलो, उनके अंदर तड़पन बहुत थी, हम भी बाबा से मिलेंगे, हम भगवान से जरूर मिलेंगे कुछ भी हो जाए। फिर वो मैसेज लेके जाती मेरी बहन की, इतने तो विरोधी हैं, इतने सब जाने को तैयार कैसे जाएंगे। और जो स्टेशन है वो 4-5 किलोमीटर गांव से दूर था, जाने का साधन सिर्फ बैलगाड़ी थी। अगर बैलगाड़ी में सब भर के जाते हैं तब तो गांव वाले वहीं हाथ पांव तोड़ देंगे, कहां चले हो। तो अभी क्या करना, अपने 4-5 लोगों को आना है परिवार का, उनको तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम डूब मरो जहां जाके, लेकिन हमारे घर वालों को तो ना ले जाओ। फिर बाबा ने कहा कि देखो सब लोग पैदल जाओ, कैसे जाएंगे, कोई निकलने नहीं देगा। तो 7 दिन की भागवत हो रही थी, एक देवी जी का मंदिर है, मंदिर के पास भागवत थी मंदिर में ही, और वो अंतिम दिन था आरती का शाम को 9:30 बजे। तो बाबा ने कहा तुम लोग तैयारी तो करके रखो, और ठीक 9:30 बजे जब सारा गांव घरों को ताला लगा के आरती में चला जाए ना भागवत के, तुम लोग निकल लो दूसरे रास्ते से। रूट बता दिया, इधर ना जाना, इधर से जाना, और जो स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है उस स्टेशन पर नहीं जाना। अब देखो ये कौन गाइड कर रहा है, एक छोटी बच्ची मेरी बहन ट्रांस में जा रही, मैसेज ला रही है, विचार करो ये कौन दे रहा मैसेज। तो इसे निश्चय पक्का होता है जो 15 किलोमीटर दूर है उस स्टेशन से जाना, वहां कोई नहीं जाके तुमको ढूंढेगा, सोच भी नहीं पाएंगे कि ये लोग उधर गए होंगे। वही हाल हुआ, जब सब लौट लौट के आते हैं आरती पूरी करके, उनके घरों के परिवार वाले तो लौट के मिलते ही नहीं है, कहाँ है किधर है, वो लोग तो वही कहाँ गए होंगे। और ये तो जरा भी लीक नहीं करने दिया कि हम लोग कानपुर जाएंगे। तो जो उल्टा रास्ता बाबा ने बताया था ना, हम लोग गए। अब जब घर से 9:30 बजे निकलेंगे तो 15 किलोमीटर पैदल कैसे और कितने घंटे में पूरा करेंगे? रात भर चलना है, सवेरा हो जाएगा लोग हमको पकड़ लेंगे, सवेरा होते हमको ट्रेन पकड़ के निकल भी जाना है, कोई ढूंढ भी ना पाए। अब पैदल भी चलें और अपना थैला बैग भी उठाएं वो भी संभव नहीं। तो 2 साइकिलों पे सबके बैग लाद दिए गए 15 लोगों के, और सब खाली हाथ पैदल चले, और 2 भाई साइकिल पकड़ के पैदल चल रहे हैं। और सर्दी का दिन था, जनवरी का महीना, ना तो बगिया के भूतों का डर लगा, तब सड़क भी नहीं बनी थी, कच्ची रास्ते से निकलना होता था, ना बगिया के भूतों का डर लगा, ना पैरों के नीचे कोई सांप आ जाएगा उसका डर लगा, कोई इस बगिया में जंगलों में खेतों में शेर चीते भेड़िया मिलेंगे उनका भी डर नहीं लगा, कुत्ते भी काट लेंगे उनका भी डर नहीं लगा, और चोर भी लूट लेंगे या कोई मार देंगे वो भी नहीं डर लगा। जैसे कि एकदम लाइट होकर के, अभी तो लाइट पने का अनुभव करने के लिए योग लगाते हैं, तब लग रहा था हमारे धरती पे पांव ही नहीं है, चलते आए सारे डरों से भय से निर्भय, और पहुंच गए और कानपुर पहुंच गए। वो अपना स्टेशन पे ढूंढे, फलानी ट्रेन फलाना बस ढूंढे, कहां गए सब घर वाले, अपन तो कानपुर सबके सब पहुंच गए, और उसी पते पे पहुंच गए जो पता वतन से बाबा ने बताया था, वहां बाबा है, सब लोग ऑल इंडिया के पहुंचे हुए बाबा से मिलने कानपुर। हमको कौन पूछेगा, हमारा तो कोई टीचर नहीं, कोई पंडा नहीं, कोई गाइड नहीं, एक एक आता था इंटरव्यू ले लेता था, आप लोग कहां से आए हैं, कहां से आए, फलानी जगह से आए, क्या करने आए, बाबा से मिलने आए, अरे भाई आपको किसने कहा बाबा आया है? हमको तो बाबा ने बताया, नशा चढ़ा हुआ था, कपारी नशा चढ़ा था, बात मत पूछो। यही कहते थे कि बाबा कह देगा तो लौट जाएंगे, लेकिन जब बाबा तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। पूरा दिन बीत गया, कोई मैसेज पहुंचाने वाला नहीं। भोजन तो मिल गया, खा लिया, सब लोग खा रहे हैं, कहा किसी ने चलो आप लोग भी भोजन कर लो, इतना तो रहम कर दिया, भोजन पूछ लिया। शाम को बाबा की क्लास हुई, हम लोग भी बैठ गए, हाल में क्लास कर लिया। फिर कह रहे हैं कि कोई तो कह दे कि भाई हम लोग आए हैं, बाबा ने हमको बुलाया है। कौन मानेगा ये बाबा ने बुलाया है तब आए हैं? कोई मानेगा? तो कोई ना माने, सबके लिए तो मजाक थे, हम लोग एक तमाशा थे। फिर रात्रि को 10:30 बज गया, तो बाबा क्लास के बाद में अपने चैम्बर में, माना रूम में बैठते थे, तो वहां जो बड़ी बड़ी दादियां हैं वो जाके बैठती थी। बड़ी दीदी जो अपनी मनमोहिनी दीदी हैं, उन्होंने आखिर बाबा को कह ही दिया कि बाबा एक ग्रुप आया है, वो सब गांवड़े के हैं, पर वो कहते हमको बाबा ने बुलाया है। तो हम तो बिना मिले जाएंगे नहीं, वो तो धरना मारे बैठे हो, सर्दी का दिन। बाबा ने कहा बुला बुला बुला, जल्दी बुला जल्दी बुला। बस फिर तो क्या, हम लोग फटफट जाके बैठ गए बाबा के सामने कमरे में। फिर बाबा ने परिचय लिया, बता दिया कैसे कैसे आए। फिर बाबा ने कहा बच्चे थके गए होंगे, तो पांव तो इतने मोटे मोटे हो गए थे सूझ के, रात भर पदयात्रा तो अब शुरू ही हमने पहले कर लिया था। फिर उसके बाद में उस जमाने में ये महात्मा गांधी का चरखा बहुत घर घर में चलता था, जो पुराने होंगे उनको पता होगा। तो वो सूत निकालने में 8 ब्लॉक का कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी, तो मुझे गलीचा इनाम मिला था, कालीन। तो मैं वो कालीन लेके आई थी कि मैं ये बाबा को दूंगी, क्योंकि मेरे इनाम का है। तो वो मैंने बाबा को दिया। फिर बाबा ने कहा बच्ची पैर दिखाओ, तो बाबा ने हाथ फेरा, कहा बच्ची ठीक हो जाएगा सवेरे तक, द्रौपदी के पांव दबाए हैं ना, ठीक हो जाएगा। तो वो जो मिलन था वो एक बड़ा अनोखा अलौकिक विचित्र था। तो थोड़ा सा सीन आप लोगों ने नाटक में देखा होगा, सुदामा का और श्री कृष्ण का मिलन, बस वो सीन क्रिएट कर लो। और सारे हैरान हो रहे, ये कौन से मेहमान है जिनको बाबा इतनी इज्जत दे रहा है। सब बाबा ने समाचार पूछ लिया, और बाबा ने तुरंत लच्छू बहनती कहा इसको जो है ना शॉल पहनाएंगे। तो रात को इतना देरी सबको आलस आता, बाबा कल, बाबा ने कहा नहीं, बाबा खुद उठ गए, पेटी खोली और शॉल लाके मुझे पहना दिया। तो शॉल पहनाने की प्रथा भी सभी से चालू हुई है। अब हम लोगों का जब कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है, हमको कौन ठहरने का ठिकाना देगा? जिन जिन का है उनका तो खबर है, उनके तो ठहरने का प्रबंध सेंटर वाले कर देंगे। तब सेंटर भी बड़े बड़े नहीं थे, इतना प्रबंध भी नहीं था, हम 15 लोगों को कहां ठहराएं? तो बाबा ने कहा बच्ची दीदी को इनको तो ठहराना है, ये तो बड़े लाडले हैं, शिकिलत दे हैं। बस मैंने कहा वो सीन रख लो सुदामा वाला, कि सिरे कृष्ण कैसे पांव धो धो के बिठाते हैं, अब इनको ठहराएं कहां? तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, बाबा ने उनको बुलाया, कहा इन बच्चों को अपने घर में ले जाकर ठहराओ, जिसका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, पता नहीं, प्रोग्राम नहीं, उसको कमिश्नर का घर रहने को मिला। सोचेंगे, भाग्य विधाता, उसको पता अपने हीरों का। वो सीन तो पूरा हुआ। 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, अब सब कहने लगे भाई तुम लोग जाओगे कब, हम लोग तो अपनी दुनिया भूल गए। अरे बाप के पास आ गए, हमको सब कुछ मिल गया, हमें तो और कोई दुनिया ही नजर नहीं आती थी कि लौट के भी जाना है। जैसे कोई पहले पहले मधुबन आते ना तो भूल जाते कि जाना है, बड़ा मुश्किल से जाते हैं। तो कहे कहे ठेले ढकेले हम लोग तैयार हुए कि अच्छा जाते हैं। सवेरे की क्लास पूरी हुई, बाबा गार्डन में खड़े थे, बहुत बड़ा उनका लान था जहाँ बाबा ठहरते थे जाके। आप सभी ने सुना होगा, ये फोटो है मम्मा के पीछे, वो कर्मा माता खड़ी है जो फूलों का है, मम्मा की गले में हार है ना, ये कानपुर की फोटो है। और कान मम्मा के पीछे दीदी के साथ साथ जो सिर है वो कर्मा माता का है। इनके यहाँ ही बाबा मम्मा ठहरते थे। नाम था कर्मा माता, कर्मा कर्मा बाई, और तिलक नगर के कानपुर की माता जी कही जाती। कानपुर की ये फाउंडर है, वो फिर दूसरा इतिहास है। हाँ, दीदी के साथ साथ सिर लगा हुआ है। तो ये कानपुर की फाउंडर है, वो दूसरा इतिहास है। इन्होंने कहा भाई अब आप लोग जाओ, इन्होंने समझाया, हम लोग तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी कोठी थी, लान बगीचा था, तो बाबा खड़े थे और हम सब लोग जाके ऐसे राउंड में अर्ध चंद्रमा में बाबा के आगे खड़े हो गए। बाबा अभी हम वापस जाते हैं, और ने कहा अच्छा वापस जा रहे। तो सबको बाबा ने दृष्टि दी और मेरे से कहा बच्ची तुम भी जाएंगी? तो मुंह से तो कोई आवाज निकली नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर मेरे को तीन बार बाबा ने नीचे ऊपर देखा, क्योंकि हम छोटी बाबा लंबा, तो बाबा को तो जरूर दृष्टि नीचे करनी पड़ेगी। तो देख के फिर बाबा दो कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ के बड़ी तेजी से खींच लिया और खींच के लगा के गले, कहते बच्ची तुम्हें नहीं जाना है, तुम जाएंगी क्या? तो मैंने कहा नहीं। फिर मेरे लौकिक पिता से कहा ये मेरी बच्ची है, इसको लेके जाओगे क्या? तो कहा जब आपकी है तो मैं कौन होता हूं ले जाने वाला। बस सौदा पक्का और सब वापस गए मैं बाबा के साथ। अब मुझे संभाले कौन? बाबा तो नहीं हमको साथ साथ लेके घूमेगा। तो बैंगलोर की जो दादी जी थी हृदय पुष्पा दादी, उस समय उनको टिक्कन दादी कहते थे, बाबा ने कहा टिक्का नहीं दारा हो, इस बच्ची को तुम संभालो। तो दादी ने हमको ऐसे संभाला जैसे कि उन्हीं का ही छोटा बच्चा हो। अभी तो बाबा तो है और सब तो चले गए जिनके साथ हम आए। मेरी एज 16 साल थी, छोटे नहीं थे लेकिन अजनबी देश में तो छोटे ही थे। तो उस समय हमको कुछ पता भी नहीं था सेंटर का उसका, ये तो सफेद कपड़े देख देख के चित्रों में बना के पहन लिया, नियम क्या है मना सेंटर पे रहना कैसे होता है, ये सब कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो हमको दादी ने संभाला। फिर उसके बाद में दिल्ली में आए, फिर ये फैसला हुआ कि सेंटर में ये रहेगी कैसे, इसको कुछ ABCD आता नहीं है, तो अमृतसर भेज दिया जाए, चंदमणि दादी के पास कुमारियां होती वो अच्छा ट्रेंड करती हैं। तो हमको फिर दादी चंदमणि के पास भेज दिया। अच्छा इसी बीच में घटना क्या होती है कि जिस दिन बाबा की विदाई हुई कानपुर से, सब लोग तो अपना अपना माना जिसको बाबा के साथ जाना है वो अपनी तैयारी से स्टेशन गए, हमें कुछ नहीं पता है। बाबा ने तो कह दिया बच्ची को मैं साथ ले जाऊंगा, इतना ही पता है कैसे जाना, कहाँ जाना, किधर से जाना, सब स्टेशन चले गए। लास्ट में बड़ी दीदी जब बाबा को लेके जा रही तो मैं वहीं लान में टहल रही थी। दीदी कहती आई मुट्ठी तेरे को तो बाबा के साथ जाना था और सब चले गए, तू क्या कर रही है? मैंने कहा हमको क्या पता कैसे जाना स्टेशन, हमें क्या पता। तो कहती आओ जल्दी इसी कार में बैठ लो तेरा सामान। मैंने कहा वो तो आत्म मोहिनी दादी थी, उसके कमरे में बंद था। आप सारे कहते हैं जो अपना बैग नहीं संभाल सकती वो सेंटर संभालेगी, बाबा ने इसको ऐसे ही ऊंचा कर दिया। अब हमें कुछ पता ही नहीं, हम तो बाबा की विदाई मस्त देख रहे हैं, हमारा बैग कहाँ है, तो उस कमरे में ताला भी बंद हो गया। मुझे क्या पता कि वो दादी ताला बंद करके आगे बाबा को सियाफ करने के लिए स्टेशन पहुंच चुकी है। खैर मतलब कुछ भी मालूम नहीं था, आप समझ लो हम कितने समझदार थे उस समय जब बाबा ने अपनाया था। फिर हम दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद अमृतसर भेजा गया। फिर अमृतसर में भी जो भी 4-6 सेवा केंद्र थे, चाहे वो अम्बाला में खुले थे, चंडीगढ़ थे, और ये अपना जलंधर, बटाला, हरगोबिंदपुर, यही 4-5 सेवा केंद्र थे। वो सब जगह दादी चंदमणि ने खूब घुमाया कि थोड़ा इसको अनुभव हो जाए, समझ जाए, सीख जाए। उसके बाद दादी जानकी पूना से अमृतसर गए हुए थे, तो बाबा ने कहा उस बच्ची को इधर लेके आओ मधुबन, क्योंकि आ भी गए सरेंडर भी हो गए और मधुबन देखा नहीं अभी तक, मेरा वही समर्पण समारोह था, और सीधा वहां भेज दिया दिल्ली से अमृतसर। अब आप विचार करो, एक गांव से निकले, प्रांत अलग, भाषा अलग, कल्चर अलग, और सीधा अमृतसर में भेज दिया अजनबी देश में। अब तो बहने कुमारियां कहेंगी अपने अपने उस शहर में रहे, दूसरे शहर में भी नहीं जाएंगे, पर हमको तो पता नहीं क्या वो एक नशा था, जहां भगवान जी भेज दें, बाबा भेज दे बच्ची। तो वहां से जब दादी जानकी हमको लेकर के आए, तो रास्ते भर एक टीचर पंडा और एक उनका यात्रु, मैं और दादी जानकी, बहुत पालना दी दादी जानकी ने रास्ते भर दिल्ली तक, इधर ले आए बाबा के पास ले आए। उसी समय मम्मा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाने के लिए रुकी हुई थी, तो जब मैं आई तो मम्मा नहीं मिली, बाबा थे, मम्मा बाद में आई। फिर इसका हिस्ट्री हॉल का फाउंडेशन वगैरह पड़ा, तब ये कुछ नहीं था। फिर बाबा ने हमको सिखाया, मात पिता का जो गायन है तुम्ही वो माता शिता, वो बाबा ने सिखाया। बंधु सखा सतगुरु टीचर परम धाम में तो नहीं, यहाँ साकार में होता है, तो वो अनुभव किया। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे नहीं छोटे बच्चे को थोड़ा सिखाते हैं, बाबा ने कहा बच्ची मेरा कमरे का तुम झाड़ू पोछा कर देना, ड्यूटी बाबा ने दी, और दो बाल्टी पानी भर के लाके रख देना, एक ठंडा एक गर्म। तो आप जो बाबा का कमरा देखते ना, इसके तीन हिस्से थे, जो गद्दी है पलंग है इतना बाबा के रहने का, बीच के पोर्शन में फल और टोली, और लास्ट जो भाई लोग जाते जो सोफा पड़ा है वो बाबा के स्नान की जगह होती थी, और बाहर में टेंट की लैट्रिन बनी थी, गेट के बाहर लोटा लेके बाबा बाहर जाते थे। तो दो बाल्टी पानी सुबह भरना, दो बाल्टी शाम को, बस स्वर्ग की बासाई तेरी है, बड़ा सस्ता सौदा है। अब थोड़े दिन और जब बीते तो बाबा ने एक काम और बता दिया, पहले तो सिर्फ कमरा ही साफ करना कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे बता दिया एक बच्ची विश्व रतन दादा के साथ तुम थोड़ा रोटी पकाने में मदद करो। फिर थोड़ा दिन बीता तो बाबा ने कहा बच्ची अब तुम थोड़ा अंगीठी को पोता भी लगा दिया करो, मट्टी घोल के। मैंने एक साथ नहीं बताया, एक एक काम धीरे धीरे धीरे, फिर बाबा ने सब सिखा दिया कैसे करना है। फिर बाबा माँ कैसे है, तो मुझे चेचक भी निकल आई। जब चेचक निकल आई तो विश्व रतन दादा होम्योपैथिक की दवाई देते थे, उनको कहा इसको तुम संभालो, दवाई टाइम पर दो, क्या नहीं खाना, नमक मिर्च जो भी है वो उन्होंने संभाला। फिर माँ कैसे, तो बाबा ने गुलाब जल और कच्चा दूध, तब गैया अपने पास थी, दूध और गुलाब जल मिला के लाके मुझे बाबा स्नान कराते थे, तो कौन कराएगा, चेचक ठंडी हो जाए। माँ का रूप देखा, तो ये भाग्य शायद मैं समझती हूँ कोटों में कोई मिलेगा। फिर पिता का रूप, बाबा शिक्षा कैसे देता, शिक्षक का रूप। तो एक दिन बाबा के कमरे में मक्खियां, एक मक्खी परेशान कर रही थी, तो वो प्लास्टिक का था थापी, उसे कहा इसको बच्ची मारो, मैंने मक्खी मारी। तो बाबा किसी बहन को पत्र लिख रहे थे, उसके सेंटर का जो सेवा था वो ढीली ढाली थी, उसी मरी मक्खी को पोस्ट में बंद कर दिया, और चिट्ठी में लिख दिया बच्ची तेरी सर्विस इतनी ढीली है, तू दिन भर क्या करती, मक्खियां मारती है, वो मक्खी भेज दी बाबा ने पोस्ट करके। तो कहते सीखे मना बहू को सिखाने के बजाय बेटी को सिखाओ, तो बेटी को कहोगे बहू सीख जाएगी। तो मेरे को लगा कि अगर मैं किसी सेंटर पे जाऊंगी, अगर मैं ढीली रहूंगी तो बाबा मुझे भी मक्खी भेजेगा। है नहीं नहीं, मैं दादी जानकी ने तो यहाँ तक पहुंचा दिया लाके, बस अभी मैं मधुबन में ही पल रही हूँ, सीख रही हूँ, खा रही हूँ, मौज कर रही हूँ। तो ऐसे करके मतलब बाबा सिखाते रहे, सीखते रहे। फिर तुरंत काम कैसे करना है वो बाबा ने सिखाया। एक दिन बाहर में निकले, तब ये ऑफिस नहीं था निर्भय भाई का, रात को विश्व रतन दादा कराची का इतिहास सुना रहे थे, एकाध कुमारियां और मेरे साथ थी। तो वो चारपाई जो थी खाट नेवाड़ की, नेवाड़ ढीली थी, बाबा ने कहा बच्ची इसको कस लो जी, 6/1/1961। तो बाबा जो है वो बाहर निकले तो बाबा ने कहा बच्ची खाट ढीली है ठीक कर लो। हाँ बाबा कल कर लेंगे। बाबा को कहा ये टालू पसंद काम। बच्ची उतरो उतरो उतरो, उतार दिया और खींचने लगे पैर लगा के। तो वो दिन है कि आज दिन है, बाबा ने सिखा दिया कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। फिर बाबा ने सोमान में कैसे रहा जाता वो सिखाया। तो एक दिन बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों को देह अभिमान बहुत है, अगर देह अभिमान नहीं है तो सब काम करना चाहिए, रोड़ी भी तोड़नी चाहिए। और ये हिस्ट्री हॉल बन रहा था तो मैंने सोचा बाबा ने कहा देह अभिमान नहीं होना चाहिए तो मैं भी जाके रोड़ी तोड़ूंगी ना, तो बाबा खुश हो जाएगा देह अभिमान नहीं है बच्ची को। यहां बैठ करके मैं रोड़ी तोड़ने लगी हथौड़ी लेके। बाबा पीछे से आया तो बाबा ने दिखाई आंख का बच्ची। मैंने कहा बाबा आप ही ने तो कहा था जिसको देह अभिमान नहीं होगा वो रोड़ी भी तोड़ेगा। तो कहा त्रिलोकी नाथ की बच्चे अपना सम्मान याद है, भीलों के साथ रोड़ी तोड़ना ये पोजीशन है। माना देह अभिमान भी ना हो, पोजीशन में रहे, अपने सम्मान में रहे। तो ये जैसे बाबा ने दोनों का बैलेंस रहे ये सिखाया। फिर 3-4 महीने बीत गए, एक दिन बाबा ने बुलाया। पार्टियां आती थी, सब घूम के आती थी, सुनते थे यहाँ दिलवाड़ा मंदिर है, यहाँ ये है, जो जो सीन देख के आए। बाबा ने कहा बच्ची तुमने यहाँ कुछ देखा? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा बाबा आप भेजेंगे तो जाएंगे। तो अपने ओम प्रकाश भाई है ना ट्रांसपोर्ट रेलवे वाले, ये उन दिनों में छुट्टियों में दिल्ली से आए हुए थे। तो बाबा ने कहा इधर आओ ओम प्रकाश, इस बच्ची को सब कुछ घुमा के लाओ, जब तक पूरा देख न ले आबू तब तक रोज इसको घुमाने ले जाओ। तब इतने कोई साधन तो थे नहीं, रोज एक घूमने जाना पैदल, लौट के आना दिन पूरा हो जाना, खा पी के निकलो। तो चेरी ले आते थे तोड़ के। तो जब पहले दिन चेरी तोड़ के लाए, पत्ते का दोना बना करके और सबने आपस में मिल बांट के खा लिया, बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ, घूम के आ गई। हाँ तो बाबा ने कहा क्या देख के आते वो बाबा को सुनाओ और क्या लेके आते हो बाबा को दिखाओ। तुम कुछ नहीं लेके आई घूमने गई, बाबा चेरी लाए थे, क्या हुआ सबको दे दिया खा लिया। बाबा ने कहा क्यों? पहले बाप के पास लाओ जिसने भेजा है तुमको, बाबा को पहले दिखाओ। बाबा को खिलाया? मैंने तो सोचे नहीं कि चेरी भी बाबा को खिलानी है। फिर मैं रोज लाके बाबा के आगे चेरी रख देती थी। मना बड़ों को कैसे हर चीज स्पष्ट देनी है तो ये बाबा ने सिखाया। फिर एक दिन क्लास के बाद में निकल रहे थे तो एक कुत्ता आ गया। बाबा ने कहा मारो इसको पत्थर, गेट के बाहर जाए। तो कोई भाई पार्टी में आए तो कहते बाबा एक पांडवों के साथ कुत्ता भी था, एक पालना चाहिए। तो बाबा कहते मेरे बच्चे कौन से कम है, जिनके संस्कार नहीं सुधरते उनको क्या कहें? 6 महीना भी कहते ना उसकी पूंछ को नली में डालो तो ना सुधरे। इतना बाबा पढ़ाता है, सिखाता है ज्ञान योग, उस टेढ़े संस्कार टेढ़ी बुद्धि वाली को क्या कहें? ये कम है, पहले वही बन जाए गॉड गॉडेस। लेंगे, पूरा करेंगे, ऐसे तो बहुत लंबा है। वो तो ये पहले टेप मशीन होती थी, शील दादी ने बॉम्बे से भेजा था तो चंद्रराज दादा रिकॉर्डिंग करते थे। तो फिर बाबा ने तो बहुत को सिखाया, सिखाते सिखाते मना परिवार के बीच में सबका ख्याल कैसे करना है, अकेले नहीं खाना है। तो टोली गिनी चुनी होती थी, तो एक दिन बाबा ने यूं उछाला तो अभी जो कैच कर पाए 2-4, किसी ने किसी को कुछ नहीं मिला। तो फिर बाबा ने सिखाया कि देखो ये हमारा परिवार है, टोली गिनती की है, ऐसे नहीं हमको 4 मिली तो हमारी हो गई, सबको बांट के खाना है, पत पूछो किसको नहीं मिला। मना हर चीज बाबा जैसे कि सिखा सिखा के सिखा के, तो ऐसे करके बहुत सारी बातें सिखाई, कितनी बताएंगे। तो बाप का रूप, टीचर का रूप, माँ का रूप, शिक्षक का रूप, सारा कुछ एक एक बात में अनुभव किया। लेकिन मुख्य बात क्या रही कि जब बाबा ने महिमा करना शुरू किया ना तो वो टेप पार्सल होके जाती थी। तो पूरे जोन में एक टेप मशीन होती थी और वो एक एक सेंटरों में बारी बारी एक भाई की ड्यूटी होती थी, जो वो जाके बाबा के महावाक्य टेप में सुनाते थे। अब वो टेप में तो मेरी महिमा हो, क्योंकि बाबा ने मेरा नाम कभी नहीं लिया, मेरे गांव का नाम है रेवना, तो रेवना बच्ची कहते थे। कहते जैसे रशिया का कोई आता तो रशियन कहलाता है ना, चीन का आता तो चीनी है, तो मेरी रेवना बच्ची है। तो धीरे धीरे फिर हमारा जो जमुना प्रसाद भाई ये भी आ गए, यशु भाई भी आ गया, मना सब सरेंडर हो गए, मेरी माँ भी समर्पित हो गई, वो सिंदरी धनबाद का सेवा केंद्र खुला, फिर बनारस में रही, मना पूरी लाइफ मेरी माँ भी शरीर छोड़ने तक सेवा केंद्र पे रही। और हमने तो कभी सोचा ही नहीं, जैसे वो संन्यास ले लेते ना तो लौट के वापस नहीं जाते, तो मेरे मन में तो संकल्प ही नहीं है कि मुझे लौकी घर जाना है। मैं 45 साल अपने घर कभी लौट के ही नहीं गई। जब मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा तब मैं गई 45 साल के बाद, और वहां पाठशाला चलती रही, हमारा सारा परिवार भी समर्पित हो गया, माँ सहित पिताजी पाठशाला चलाते रहे। और मधुर वाणी ग्रुप में सतीश भाई है ना, मेरे कर्जन का बेटा है, प्रेम भाई है, मना सब यहाँ के नीचे शांतिवन में बहुत सारे हैं, उसी पाठशाला वाले सब समर्पित हैं, ज्ञान सरोवर में कई हैं, सब समर्पित हैं। तो जो बाबा ने कहा ना कि तुम घर की चैरिटी बेसिक्स एट होम और तुम्हारे बच्चे बाहर सेवा में जाएंगे, तो ऐसे करके मतलब। तो एक बार हंसी की बात सुनाते, मेरे लौकिक पिताजी जब मधुबन आए तो मैं नहीं आती थी, और वो आए तो हम ना हो, तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, सब नष्टो मुआ, स्मृति लब्धा सब बन गए बाप के। तो एक बार पता चला कि हम भी उसी समय आए थे कि यहाँ ग्लोबल में भर्ती हैं, बीमार हैं, तो गुड्डी बहन जो है ना इलाहाबाद की, बोली चलो मिली आते हैं, क्योंकि उनसे भी उनका कनेक्शन बचपन में था, इनके पिताजी सुल्तानपुर में जेलर थे तो आना जाना था, कहा चलो मिल आए, आपके पिताजी बीमार हैं। हम लोग गए पूछ के रूम नंबर वगैरह, मिल भी आए, बातचीत भी करी आए। तो चलते समय गुड्डी बहन ने कहा, माना मनोरमा बहन ने, इनको पहचानते हो? कहा हाँ। कहा कौन है? कहा मधुबन में देखा है। अब आप सोचिए कि कितना लौकिक का टच रहा होगा। तब कहा ये तो विद्या है। तो शांत हो गए, बोले नहीं कुछ, अभी तो कह रहे हैं मधुबन में देखा है। फिर मैंने कहा इनको देखा है, पहचानते हो? कहा हाँ, इनको भी यही कहीं देखा। हमने कहा ये जेलर साहब की बिटिया है। तो दोनों की पहचान यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में हुई। तो जित वो गीत बहुत बनाते थे, कविताएं बनाते थे, बहुत सारे उनके बनाए गीत कैसेटों में है, लेकिन केवल एक गीत महत्वपूर्ण मानेंगे जो अव्यक्त बाप दादा की विदाई में बजता है कि तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहान में, तुमने हसीन बनाया हमको भी जहां में, ये मेरे लौकिक पिताजी का बनाया हुआ है। तो वो सार्थक है कि बाबा के आगे अभी भी 40 साल से बज रहा है और आगे भी बचता रहेगा। तो इस तरह से हमारा सारा परिवार यज्ञ में आ गया और बाबा का बन गया। बस ये छोटा सा अनुभव है, और कभी सोचा ही नहीं कि जब हम माँ बाप की गोद में आ गए तो लौकिक घर में जाना है, ये तो हमें ज्ञान ही नहीं था, इसलिए हम 45 साल गए ही नहीं लौट। ओम शांति जी। तो बताना वो जो टेप में महिमा सुनी तो दादी ने बाबा से मांग नहीं करी थी। अब वही माँ जो जिसको कहते थे ना सब लोग, जिसको अपना बैग संभालने नहीं आता उसकी मांगनी शुरू हो गई। अब महिमा तो सब जगह जाने लगी। फिर मम्मा ने मेरे से पूछा कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और कानपुर चार जगह से तेरी मांगनी है, कहाँ जाओगी? तो मुझे भी शरतन दादा ने पक्का किया, तुम अपने मुंह से कभी ना कहना फलानी जगह जाएंगे। तो फिर ज्यादा जो डिमांड थी वो गंगे दादी की थी, तो मम्मा ने मुझे कानपुर भेज दिया। तो आप समझ लो कि 1962 से लेकर के आज तक गंगा के किनारे, गंगा के पास रहते। वो कहते हैं ना कि हम भी, वो एक पत्थर होता है ना जो ऊपर से चलता है और नीचे तक आते आते चिकना हो जाता, तो हम भी गंगा में गोता खाते खाते यहाँ तक पहुँच गए हैं। 50 साल पूरे कर लिए और बाबा के यज्ञ में अपनी सेवाएं देते हुए, तो इसलिए हमारा सारा, हम तो कहेंगे समय रहते हम आ गए बाबा के पास, बाबा के बन गए, और समय रहते अपना सब सीन देख लिया 50 साल में, सब दादियां देख ली नैनों से, मम्मा देखा, बाबा देखा, और सबसे गुण मिलते मिलते वो निर्गुण में थोड़े गुण आ गए जो आप सबकी सेवा में हाजिर हो गए। ओम शांति जी। वो छोटी बहन, बाबा कहते ना कि ज्ञानी से ध्यानी से ज्ञानी अच्छे, वो बहन भी समर्पित हुई सेवा में निकली, पर वो क्या है, वो चली गई एकदम सीधा बैंगलोर, तो हमारी तो भाषा पंजाब में फिर भी ठीक ठाक रही, उसको तो वो भाषा बिल्कुल कर्नाटक की मिली। फिर बैंगलोर से लुढ़कते पड़कते फिर इधर उधर आई, फिर वो उसको कहीं रास नहीं आया, अंत में 4-6 साल के बाद शादी कर ली। लेकिन ये भी कमाल है कि जब से उसने शादी की 40 साल हो गया, हम लोगों ने सोचा हमारे ईश्वरी परिवार से मर गई, 40 साल किसी ने उसकी शकल नहीं देखी, कि गई तो गई मर गई, मरे का क्या सूरत देखेंगे। तो ये पक्का दिल में था कि बने तो बाबा के बने, और इस कुल का मरे तो मर गया ना गया जी। मरने के बाद क्यों आएंगे देखने, मरने के बाद जी फिर से लाना चाहिए। ठीक है, अब हम संपर्क करेंगे, मम्मा का सुनाएंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम हो गया है। मम्मा का भी कम नहीं है, बहुत लंबा है। वो फिर बहुत हो जाएगा, 40-45 साल गंगे दादी के साथ रहे, कम है। मम्मा की 2-3 बातें मुझे जो गांठ बांधनी थी, मम्मा ने कहा था कि एक तो कभी भी जीवन में ना नहीं बोलना, ना माना नास्तिक, ना नहीं बोलेंगे तो तुम बहुत कुछ सीख जाएंगी। समझो कोई तुमको काम देता है, इसका मतलब उसको काम आता है, तो ये ना कहना डायरेक्ट फटाफट कि हमको ये नहीं आता, स्टेट ऐसे नहीं बोलना। फिर क्या बोलेंगे मामा, मामा ने कहा बोलना तरीका बता दो हम कर देंगे। तो वो जब तुम्हें तरीका बताएगा तो बहुत सारे तरीके तुम्हें आ जाएंगे। दूसरा, मम्मा ने कहा कभी अपनी जीवन को लिफाफा नहीं बनाना, लिफाफे में रहस्य होता है, पता नहीं इनके मन में क्या है, पता नहीं इनके दिल में क्या है, पता नहीं इनमें क्या है, तो वो लिफाफे के अंदर रहस्य होता, पता नहीं इसमें क्या है। पोस्ट कार्ड बन के रहना, खुली किताब, खुला पोस्ट कार्ड, कोई को कुछ नहीं कि क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब अपनी स्थिति को, मन को, विचारों को ट्रांसपेरेंसी रखो। तो ना नहीं करना और खुला पोस्ट कार्ड बन के रहना, और आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, ये जरूर याद रखना, क्योंकि धन कमाना आसान है, विश्वास कमाना आसान नहीं है, कभी विश्वास का घात नहीं करना। तो जो मम्मा ने पढ़ा दिया वो दिमाग में भर गया। जैसे बाबा ने कह दिया बच्ची तुमको सब कुछ आता है, अब सोचो क्या आता होगा मुझे उस जमाने में। हमने कह दिया हाँ बाबा सब कुछ आता है, तो बाबा ने पता क्या कहा, तथास्तु। पर सीखते 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 सब कुछ सीख गए। जिसको सड़क पे चलना ही नहीं आता था उसने जीवन में ड्राइविंग भी खूब की, खूब गाड़ियां चलाई, सब काम किया, ऑफिसों के काम, सेक्रेटरियट के काम, कोर्ट कचहरी के काम, दफ्तरों के काम, जितने जो काम, मैंने गंगे दादी बोल दिया था कि जो काम कोई ना कर सके फील्ड का वो मुझे दे देना, बड़े से बड़े मेलों का भी अरेंजमेंट करना, जो करना वो सब मैं कर दूंगी। तो ये बाबा की आशीर्वाद रही, बाबा की दुआएं रही, मम्मा की पालना रही कि ना नहीं करना। इसलिए सीखने का शौक जो मम्मा ने कहा सीखने का रखना, कभी ना समझना कि मुझे आता है, ये अभिमान कभी ना लाना। सीखना है, सीखना अंत तक सीखना है, मरते तक सीखना है। तो सीखते सीखते सब आ गया, हालांकि सब क्या आ गया, गाड़ी चलानी, कोई भी सेवा केंद्र का काम नहीं रुक सकता, ये आ गया बस। बाकी तो दुनिया में बहुत सारे काम है, हुनर है, अकल है, अनुभव है, लेकिन यह है कि सेवा केंद्र का कोई काम झाड़ू पोछा से लगाने तक जो भी काम है वो रुक नहीं सकता है। इतना मम्मा बाबा ने सिखा दिया, अकल दे दिया, और दादी के साथ रह के तो सीख ही गए, गया ही नहीं। तभी तो बाबा को नशा था, बाबा के इसी की शादी करने तो गया था, मैं इसी को तो लेने गया था। उसके बाद बाबा नहीं गए, मम्मा केवल एक बार गई बस, बाबा नहीं गए। लखनऊ पता नहीं कब गया, उसी टाइम पे गया, उस समय तो गया ही नहीं था, क्योंकि हमको पता तो ऊपर से कानपुर का मिला था, लखनऊ का नहीं मिला था, नहीं। वो उससे भी पहले का होगा, मेरे सामने तो बाबा कभी वापस लौट के यूपी गए ही नहीं, समझो मेरे लिए गए थे, मुझे ही लेके आ गए। तो इसलिए हम लकी हैं लाडले हैं, कोटो में कोई है जी, नहीं और लकी हैं, ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक संकल्पों की रचना है, एक आकारी रचना है, अव्यक्त रचना है, एक साकार की रचना है। तो आप लोग अगर अव्यक्त की पालना लेते इतने आगे बढ़ गए तो हमसे तो बहुत आगे हैं आप लोग, हम लोग तो अलबेले रह गए। आज उस साकार की कदर ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। ओम से।